Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 or 2342-1050 and 2331-0464. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Harsh Ranjan.
नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते हुए ग्राफ पर। सप्ताह का पहला दिन, सोमवार का दिन, और आज हम अपने श्रोताओं को भी आमंत्रित करते हैं। श्रोता, आप चाहें तो शेयर मार्केट से संबंधित या देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो, जरूर पूछिए। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2310-464। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
And now let's begin today's edition with the headlines in English.
Well, let's take a look at the headlines first. Domestic benchmark indices start the week on a positive note. Sensex settles at 82,200. Nifty reclaims 25,000 mark. Major Asian markets end with gains. And EPFO adds over 20 lakh members in May this year, the highest ever in a month.
घरेलू शेयर बाजारों में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी। सेंसेक्स लगभग 450 अंक बढ़ा तो निफ्टी ने 25,000 का आंकड़ा पार किया। प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में भी बढ़त, और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मई में रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े। घरेलू शेयर बाजारों में आज सप्ताह के पहले दिन शुरुआती सुस्ती के बावजूद आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 442 अंक बढ़ा और 82,200 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 122 अंक बढ़कर 25,090 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप 0.55% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप लगभग सपाट रहा।
Domestic benchmark equities bounced back after a muted start today, lifted by strong first quarter results of some major companies, including banking heavyweights. The 30-share BSE Sensex settled at 82,200, up 442 points or 0.54%, and the NSE Nifty 50 ended the day at 25,090, up 122 points or 0.49%. In the broader markets, the BSE Midcap Index rose 0.55%, while the Small Cap Index settled almost flat with a negative bias.
हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़ने लगे हैं, आपसे गुजारिश थोड़ा सा इंतजार करें, हम शेयर मार्केट की स्टोरी खत्म कर लें। और निहारिका, सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं आज, उसमें से 19 कंपनियों के शेयर बढ़े हैं। इटर्नल के शेयर 5.38% बढ़े, जबकि आईसीआईसीआई बैंक में 2.76% की तेजी रही है। एचडीएफसी बैंक 2.19% बढ़ा है। दूसरी तरफ कुछ शेयर गिरे भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3.29% की गिरावट रही। एचसीएल टेक 1.21% टूटा, जबकि टीसीएस में लगभग 1% की गिरावट रही।
And Harsh, while we're on the subject, let's also talk about sectoral indices at the BSE. 14 out of 21 sectors ended higher from their previous session close. Capital goods rose 1.33%, BankEx added 1.28%, and financial services advanced 1.26%. Among the laggards, energy slipped 1.22%, oil and gas lost 0.70%, while FMCG shed 0.49%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,188 companies declined. Shares of 1,959 companies advanced, while shares of 180 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 84 companies hit their 52-week high, while 29 hit their 52-week low.
और विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे कमजोर हुआ है. एक डॉलर की कीमत 86.30 रुपए रही. दिन के कारोबार के समय डॉलर सूचकांक 98.22 पर कारोबार कर रहा था. शिशिर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलना पड़ेगा मुंबई, जहां से आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आनंद, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में. क्या सवाल है आपका?
सर, मेरे दो सवाल है. एक तो इसराइल हमास और रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, और इसमें और कंट्री इंट्रोड्यूस लेंगे या नहीं लेंगे.
शिशिर, मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि ये कई वर्षों से जो चल रहा है ग्लोबल सीन बना हुआ है, तो इससे क्या फाइनेंशियल मार्केट्स कितने वो हुए हैं?
देखिए, ये भविष्यवाणी करना कि युद्ध कब खत्म होगा, ये बड़ा मुश्किल है. और अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई हमेशा ये होता है कि अब तो बस खत्म होने वाली, फिर पता चलता है कि अचानक से उसमें कुछ तेजी देखने को मिली है. तो ऐसा पहली बात कि ये सामरिक कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं. लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बाकी दुनिया के देश जो हैं, उन्होंने एक तरीके से अपनी दूरी जो है वो बनाए रखी है. कुछ एक देश जरूर इसमें शामिल हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी दूरी बना ली. और इसका अगर वैश्विक बाजारों के असर की बात करें, वैश्विक बाजारों में अगर आप देखें कि जो चाहे अमेरिका का बाजार हो या फिर यूरोप का बाजार हो या एशियाई बाजार हो, इनमें उतार चढ़ाव के कई दूसरे कारण रहे हैं. अब लड़ाई का असर जो है वो उस तरीके का हमें देखने को नहीं मिल रहा है. लेकिन इनका मूल सवाल था कि लड़ाई कब खत्म होगा, माफ कीजिएगा, वो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते.
बिल्कुल. एमपी सिंह हमारे अगले कॉलर दिल्ली से जुड़े हुए हैं. एमपी सिंह जी, स्वागत, क्या सवाल है?
एमपी सिंह जी, इफ यू कैन हियर अस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
Yeah, I can also hear you. I am 6 years old and so far I have not participated in share market. But I am very keen to join that. I have surplus fund around say 25-30 lakh rupees. And it's a very 18-year-old question. The how to go about it? और किस तरह की जो क्या कहते हैं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, 12 से 14 घंटे काम करता रहा, लेकिन मैं किस क्या टाइम दूं शेयर मार्केट जिससे मैं इन टच रहूं और कोई चीज फुलिशनेस ना कर दे इस उम्र में आके.
पहली बात, सिंह साहब, आपको बहुत बहुत बधाई. आप काफी लंबे समय काम करते, तो ये जो आलोचना की जाती है कि बहुत लंबा समय काम पे नहीं देना चाहिए, आप दे रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि आपके पास इतना बड़ा एक कॉर्पस मौजूद है. देखिए, शेयर बाजार की एक बहुत ही सामान्य से व्यवस्था को अपना लीजिए. किस्तों में निवेश करिए, किस्तों में मुनाफा कमाइए. ये आप ऐसी रणनीति अपनाते हैं तो इस रणनीति के जरिए आपको नुकसान नहीं होगा. दूसरी रणनीति आपको जो अपनानी है वो ये ध्यान में रखना है कि आपका मूल के ऊपर बट्टा नहीं लगना चाहिए. यानी कि जो आपने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो 110 रुपये हो तो 10 रुपये का मुनाफा काटे, 100 रुपये में कोई घाटा जो है वो ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें. तो ये दूसरी व्यवस्था, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें. तीसरा, सुनी सुनाई बातों पर शेयर बाजार में कभी निवेश ना करें. बाजार में पैसा लगाना है, पैसा आपका अपना है, तो उसके पहले थोड़ी सी बातों पर ध्यान देख लीजिए. तीन चीजें किसी भी कंपनी को समझना हो, तीन बातों पर ध्यान रख लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं टीबीडी, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और डिविडेंड का प्रोस्पेक्ट. अगर टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यानी कि बहुत जिसे कहा जाए कि जो उनकी कुल कमाई है, जो उनका मुनाफा है और वो लाभांश देने के मामले में किस तरीके से हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही अप्रत्याशित अगर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उस कंपनी से आप बचे. मतलब ये समझ लीजिए कि एक तिमाही में उनका मुनाफा 30% बढ़ता है, दूसरी तिमाही में अचानक 100% बढ़ जाता है, फिर तीसरी तिमाही में 20% पे आ जाता है. इस तरह के शेयरों से आपको दूर रहना चाहिए. ये कुछ बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखिए तो शेयर बाजार आपको निराश नहीं करेगा. और आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेयर बाजार में धैर्य का भी निवेश करना चाहिए. केवल पैसे का निवेश मत करिए. ये मत सोचिए कि आज लगाए और रात को हमने पैसा निकाला या कल होके पैसा निकाला और काम खत्म. शेयर बाजार को थोड़ा समय दीजिए, वो आपको जरूर फायदा देगा.
Well, you know what they say, right? Patience and perseverance overcome mountains.
It's so, the patience is very important along with the money which you are putting in the stock market.
Absolutely. And with that, let's now go over to the Greater Noida area. Nitin, our next caller, is with us. Nitin, if you can hear us, please go ahead with your question.
Namaskar, sir. Mera ye pehla question hai Market Mantra mein. Mera question hai related to FIIs. So, because I understand ki FIIs market ko bade large paimane par influence karte hain. वो पैसा कभी निकाल लेते हैं, कभी डाल लेते हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज भी जिससे हम इन लोगों के जो इन्फ्लुएंस है उसको थोड़ा लिमिट कर सके, क्योंकि एट द एंड रिटेलर का पैसा जाता है अगर ये लोग पैसा निकालते हैं मार्केट से. तो
नितिन जी, पहली बात ये ध्यान रखिए कि FII या FPI जिसको आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके पैसे को हम लोग हॉट मनी कहते हैं. हॉट मनी का मतलब यह है कि जैसे कोयले के एक टुकड़े को अगर आप अपने हाथ पे रखे तो आप सेकंड भर से भी ज्यादा नहीं रख सकते हैं. तो ये लोग जब पैसा लगाते हैं तो इनका मकसद हमारी जरूरतों को समझना नहीं बल्कि अपनी जरूरतों को समझना है. वो पैसा लगा रहे हैं अपने फायदे के लिए लगा रहे हैं, जहां कहीं भी उनको लगता है फायदा, और वो पैसा निकाल करके निकल जाएंगे. सरकार कभी भी इनके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकती. अगर बंदिश लगा देगी, रोक लगा देगी, या ये कहे कि लॉक इन, अगर शेयर बाजार की भाषा में कहूं लॉक इन कर दे कि आप आएंगे और आप 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते, साल भर तक पैसे नहीं निकाल सकते, तो ये लोग कभी भी नहीं आएंगे. लेकिन इन सब के बीच आप एक बात याद रखिए, हाल के वर्षों में एक अच्छी चीज ये हुई है कि हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, चाहे वो बैंक हो, वित्तीय संस्थाएं हो, म्यूचुअल फंड हो, यहां तक कि खुदरा निवेशक भी जो हैं, उनकी बदौलत बाजार को काफी सहारा मिला है. और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि DFI का इन्वेस्टमेंट जो है वो FPI के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है, और बाजार को संभालने में DFI की भूमिका काफी अहम होती है. तो बंदिश लगा करके आप इन्हें रोक नहीं सकते हैं, और आपके अपने निवेशक भी जो है वो सक्षम हो रहे हैं बाजार को संभालने के लिए.
एंड विद दैट वी आल्सो हैव राजेश विद अस. राजेश इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली. गुड इवनिंग राजेश, इफ यू कैन हियर अस प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन.
या नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम. मेरा दो क्वेश्चन है. पहला, मैं 42 इयर्स ओल्ड हूं और मैंने NPS में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, क्योंकि प्रीवियस टैक्स में हमारा आई थिंक NPS पे कुछ हमारा टैक्स रेट मिलता था. तो क्या उसको अब न्यू रेज में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं आया था, तो क्या इसको हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए? एक अच्छा स्कीम है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या हमारा टैक्स का बनता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए.
राजेश जी, आप सरकारी कर्मचारी हैं?
नहीं सर, मैं प्राइवेट.
ओके ओके, ठीक है. देखिए राजेश जी, आपने NPS पे इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निजी क्षेत्र में पेंशन को लेकर के कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती है, तो हमें भविष्य की सुरक्षा का खुद ही इंतजाम करना पड़ता है. आप वो पैसा लगाए रखें और आपको साल में एक बार उसमें बदलाव करने की भी अनुमति मिलेगी. तो अभी आपकी उम्र 42 वर्ष है जैसा आपने कहा, अगर आप 50 पार कर लें तो फिर आप बदलाव कर सकते हैं. फिर आप इक्विटी पे कम करते जाएं और डेट इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ाते जाएं, तो इससे आपको काफी बेहतर रिटर्न जो है, जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सकता है. दूसरा जो आपका सवाल था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. देखिए, अब जो हमारे पास व्यवस्था है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 20% का, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसमें 1,25,000 रुपए तक आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 1,25,000 रुपए से ज्यादा अगर आप देते हैं तो 12.5% की दर से उस पर आपको टैक्स देना है. दूसरी चीज आपको याद रखना है कि 2017-18 तक जो आपने मुनाफा कमाया है वो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है, यानी कि उसकी ग्रैंडफादरिंग हो चुकी है. उसके बाद जो मुनाफा है उसमें 1,25,000 रुपए तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना है, उसके बाद देना है. और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की परिभाषा बहुत स्पष्ट है, 365 दिन या फिर 365 दिन से ज्यादा.
रंजन हमारे साथ अगले कॉलर हैं, दिल्ली से जुड़े हुए. क्या सवाल है रंजन जी आपका, पूछ लें.
वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मार्केट पंथर टीम को नमस्कार करता हूँ. मैं रंजन बोल रहा हूँ दिल्ली से. मेरा सवाल यह है कि मैंने लास्ट ईयर मार्च में अराउंड 29 लाख का इन्वेस्टमेंट किया डिफरेंट स्टॉक मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में, और सारी कंपनी अच्छी है, और मुझे आज की डेट में भी उसमें करीब 1.5 लाख का लॉस चल रहा है टोटल मूल से, जिसमें कि पर्टिकुलर एक कंपनी का शेयर, चूंकि कंपनी का नाम मुझे बताना नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, पर्टिकुलर एक कंपनी में ही 2.5 लाख का लॉस चल रहा है. तो मेरा एक्चुअली ये जानना है कि किसी ने मुझे सलाह दी कि आप जिसमें लॉस ज्यादा चल रहा है, 2.5 लाख का लास्ट पिछले साल मार्च से है, हालांकि वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि लॉस नहीं रिकवर कर पा रहे, तो आप उसके कुछ शेयर बेच करके आप उसके पैसे को दूसरे किसी कंपनी में लगा दीजिए, नेट में आपको बेनिफिट होता है। मैंने इसके पीछे क्या ग्राउंड रूल्स है, बस मेरी जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि नेट में मेरा आज के डेट में भी अराउंड 1.5 लाख का लॉस चल रहा है, मैं मूल में भी नहीं आ पाया हूँ। धन्यवाद।
रंजन जी, दो तरीके होते हैं जब आपको किसी कंपनी में घाटा हो रहा है, तो एक तरीका यह होता है कि आप एवरेजिंग कर लीजिए। एवरेजिंग करने का मतलब यह है कि आपने कम कीमत पर, अभी जैसे आपने बताया कि पिछले साल से और इस साल की तुलना में लगभग 2.5 लाख रुपए का घाटा है, तो कम कीमत पर शेयर खरीदेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो आपकी कम हो जाएगी और आप उसमें जो पूरा पैसा है उस पैसे से आप एक बराबर कर पाएंगे अपने कुल जो आपके मूल है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या हम उसको कुछ बेच करके कहीं और पे लगा दें, तो इसके लिए आपको मतलब ये ध्यान में रखना है कि मूल में कम से कम बट्टा लगे। मतलब आपका अगर मूल 100 रुपए का है और वो 98 रुपए पे आ जाता है, तब आप उसका पैसा निकाल करके किसी ऐसे शेयर में लगाते हैं जहां पर थोड़ी सी कम कीमत है और आपको उसमें फायदा हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का आपको इसमें एक तरीके से असर इसको देखने को मिल सकता है, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करके ही आप निवेश करें। मेरी सलाह होगी एवरेजिंग करें और उसके बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद थोड़ी सी भी कीमत ऊपर जाती है बेचे, वो ज्यादा फायदेमंद होगा।
बिल्कुल, और शेयर मार्केट आज मंडे के दिन 0.5% तो बढ़ा ही है, हमने उसकी बात बताई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एशियाई बाजारों का क्या हाल रहा। प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी रही, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी 0.71% बढ़े हैं, हांगकांग के हैंगसेंग में 0.67% की बढ़ोतरी रही, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.42% बढ़ा आज। जापान का शेयर बाजार आज छुट्टी की वजह से बंद रहा। चीन ने अपनी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए इसे 3% के आसपास ही रखा है और इसका असर आज एशियाई बाजारों में देखने को मिला। हालांकि यूरोपीय बाजारों में आज थोड़ी सी गिरावट रही है, फ्रांस का कैक 40.39% गिरा है, जबकि लंदन के फुटसी 100 और जर्मनी के डैक्स में मामूली गिरावट रही है।
एंड विद दैट लेट्स गो ओवर टू मुंबई टू आवर नेक्स्ट कॉलर। गौरव इज कॉलिंग अस फ्रॉम मुंबई। गुड इवनिंग गौरव, आई होप यू कैन हियर अस, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन।
हेलो,
गुड इवनिंग गौरव, आई होप यू कैन हियर अस।
हेलो
जी, सवाल पूछिए गौरव जी।
हाँ मैं, गुड इवनिंग, मेरा एक क्वेश्चन है कि पीएफ में टैक्सेबिलिटी कैसा है और विड्रॉल कभी कर सकता है विदाउट टैक्स, क्योंकि उन लोग 15G और 15H मांगते हैं।
नहीं, आप पीपीएफ की बात कर रहे हैं, ईपीएफ की बात कर रहे
हैं? पीपीएफ नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड।
अच्छा, ईपीएफ की आप बात कर रहे हैं?
हाँ, ईपीएफ की।
ओके ओके, ठीक है। गौरव जी, देखिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ईपीएफ में जो है वो 60-40 का रेशियो होता है, माफ कीजिएगा, वो एनपीएस में होता है। ईपीएफ में आप जब रिटायर करेंगे तो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीपीएफ में जो है, अगर आप पैसा निकालते हैं, आपको 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना है। हाँ, अगर आपने एनपीएस में पैसा लगा रखा है, वहां पर 60-40 का रेशियो रहता है, तो ईपीएफ में आपको कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आप, लेकिन हाँ, उसमें ध्यान रहे कि रिटायरमेंट यानी कि 58 साल या 60 साल के बाद आप पैसा निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। और 15G और 15H जो है, अगर 60 साल से कम के हैं तो आप 15G आप बैंक में दाखिल करेंगे ताकि आपका टीडीएस ना कटे, और 60 साल के ऊपर के हैं तो 15H दाखिल करेंगे अगर आपका टीडीएस नहीं कटना है तो। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल जो आपका स्लैब है उससे कम होनी चाहिए।
And with that, our next caller happens to be from Bihar. Tinku joins us from Bihar. Good evening, Tinku. Please go ahead with your question.
Tinku ji, सवाल पूछ लीजिए।
नमस्ते सर।
नमस्ते, सवाल पूछें।
सर, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल है, मेरा 42 साल एज है।
हाँ।
और मैं मजदूर क्लास के हैं, दिल्ली में काम करते, बिहार के हैं, किसी कंपनी में, और मैं पेंशन लेना चाहते हैं, तो कौन सी अटल पेंशन योजना, तो खत्म उसका हो गया, उम्र 42 हो गया। एमपीएस के बारे में जानकारी दे रहे थे, एक ये सवाल चाहिए जो पेंशन योजना चालू करना चाहते हैं, और एक दूसरा जो टर्न पॉलिसी है, जो 12,000-14,000 का सैलरी लेबर कमाते हैं, उसका टर्न पॉलिसी कितना तक कम मिल सकता है, यही जानकारी चाहिए
जी।
देखिए एनपीएस के लिए आप मतलब वैसे तो थोड़ा विलंब हो चुका है, लेकिन अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके पास इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वहां पर ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होगा, तो उसका असर पेंशन पे भी आपके पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये भी होता है कि कई बीमा कंपनियां हैं जो पेंशन पॉलिसी भी ऑफर करती हैं, वो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे करके आप उसमें खरीद सकते हैं। तो जो आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं उससे बेहतर है कि आप पेंशन पॉलिसी एक ले लीजिए और वहां पर जो है उसका आपको फायदा बेहतर होगा एनपीएस के मुकाबले, क्योंकि एनपीएस में जो आप पैसा देंगे वो कॉर्पस आपका बहुत बड़ा, आप 42 के हो चुके हैं, 18 साल की उम्र और बची हुई है, तो बेहतर है। हाँ, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि अभी ये व्यवस्था हो गई है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप एक पेंशन पॉलिसी ले लीजिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है।
And from Bihar, let's now go over to Gurugram. Our next caller joins us from Gurugram. Good evening, Ram Prasad ji. In case you can hear us, please go ahead with your question.
Hello.
Ji, sawal puchhe.
Haan, namaskar.
Namaskar.
Awaaz nahi aa rahi aapki.
Haan, namaskar. Aap puchhe. Aapki awaaz aa rahi hai mujhse.
सर मैं ये कह रहा था कि एक्चुअल 50,000 कोई हमारा लड़का बाहर है अमेरिका, तो वहाँ से यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है 58,000 पर मंथ, तो क्या उसके लिए बढ़िया रहेगा?
अगर मैं आपकी आवाज़ को समझ पा रहा हूँ तो आपका बेटा या आपके बच्चे जो हैं बाहर हैं और वो यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो NRI अकाउंट के जरिए वो पैसा जो है वो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने इस साल मई में 20,06,000 नए सदस्य जोड़े, जो अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। ये अप्रैल 2018 में पैरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि नए सदस्यों में 2,62,000 महिलाएं और 18 से 25 आयु वर्ग के 5,60,000 सदस्य शामिल हैं। ये अप्रैल 2025 की तुलना में 4.79% की वृद्धि दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि देश के औपचारिक रोजगार परिदृश्य की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार सुगमता और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं।
And with that, let's also quickly go on to our next caller, Gurudat, who joins us from Gurugram. Good evening. Please go ahead with your question.
Gurudat ji, आप आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछ लें प्लीज।
Well, till the time we get to hear from our next caller, let's also quickly go over the core industries data. India's infrastructure output, as measured by the combined index of 8 core industries, increased by 1.7% in June 2025 compared to the same period year ago. The production of steel, cement and refinery products recorded positive growth, according to a press release by the Ministry of Commerce and Industry today. The ICI measures the combined and individual performance of production of 8 core industries: coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement and electricity. Steel production increased by 9.3%, cement production witnessed an uptick of 9.2% and refinery production rose by 3.4%. On the other hand, coal production declined 6.8%, crude oil production was down 1.2%, natural gas production dipped 2.8%, fertilizer production slipped by 1.2% and electricity generation fell 2.8% in the month of June.
Samir हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। समीर जी, क्या सवाल है आपका? समीर जी, आप सुन पा रहे हो तो सवाल पूछ लें। लग रहा है समीर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपने कच्चे तेल की बात करें निहारिका।
Well, international crude oil was trading mixed today as traders weighed the impact of new European Union sanctions on Russian oil supply and monitored progress on global trade talks. Brent crude was trading 0.17% down at $69.16, while WTI crude was 0.09% up at $67.40 per barrel when reports last came in.
एक बार फिर गुरुदत्त जी गुरुग्राम से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है?
नमस्कार सर।
नमस्कार
सर। जैसे कि आज की ही तारीख में मेरी कुछ एफडी है मैच्योर हुई है
जी,
वो भी प्राइवेट बैंक में, चार अलग अलग बैंकों में
लगभग कितने टोटल आपके पास वो है?
जी
चार बैंकों में जो मैच्योर हुई है वो रकम कितनी है लगभग?
30 लाख।
जी जी जी, अब बताएं सवाल। गुरुदत्त जी, आपसे एक बार संपर्क फिर टूट चुका है। और सोने चांदी की क्या कीमतें रही निहारिका?
Well, in the bullion market, 24 carat gold was trading 0.71% up at 99,150 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading 0.85% up at 1,14,120 rupees per kilogram a short while ago.
और MCX में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमत 98,711 रुपए पर चल रही थी, जबकि सितंबर चांदी की कीमत 1,14,120 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी।
And with that, let's also take a look at inflation. The government has said that it has taken a series of measures to control inflation with the focus on generating sustainable employment and improving household income. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. She said the government took the decisions to augment the buffer stocks for essential food items, conducted strategic sales of procured grains in the open market, and facilitated retail sales of selected food items at subsidized rates. The minister added, these steps yielded results, and consequently, the average retail inflation rate declined from 5.4% in 2023-24 to 4.6% in 24-25, which is the lowest in the last 6 years.
Shishir, market ke bare mein aapse janna chahenge ki aaj saptah ka pehla din, halaki overall breadth jo raha wo negative raha, lekin aadha pratishat ki badhotri rahi hai. Chin ne, हमने देखा कि अपने ब्याज दरों को बरकरार रखा है, एक साल के लिए 3% और ज्यादा के लिए 3.5%, उसका असर एशियन मार्केट पर पड़ा है। अभी की स्थिति में आपको क्या लगता है कि हम अब किस ओर हेड कर रहे हैं?
देखिए, आज अगर बाजार की आप स्थिति कहेंगे तो कुछ चुनिंदा बैंकों की वजह से आज बाजार में आपको थोड़ी तेजी देखने को मिली, वरना आपने खुद ही कहा कि जो
आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अच्छे खासे बढ़े आज।
ब्रेथ मार्केट का ब्रेथ जो था वो बहुत पॉजिटिव नहीं था, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या कम थी। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि बाजार में एक थोड़ी सी जो है, खासतौर पे अमेरिका के टैरिफ डील को लेकर के थोड़ी सी अभी घबराहट बनी है। दूसरा जो मुद्दा चीन का, आपने कहा कि चीन ने अपने ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा है। देखिए, अभी के समय में चीन एक ऐसी मौद्रिक ताकत के रूप में उभरा है कि वो दुनिया के सारे बाजारों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है।
बिल्कुल।
और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चीन इकलौता देश है जो वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था से काफी अलग चलता है, क्योंकि वो जब चाहे अपनी मुद्रा, चाहे वो युआन कह लीजिए उसका नाम या रेनमिनबी कह लीजिए, वो कभी भी उसका मूल्यांकन कर सकता है। तो चीन के मौद्रिक व्यवस्था पर सबकी नजर रहती है। अब उन्होंने अपने ब्याज दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा है। इसका एक संकेत वैश्विक बाजार के लिए भी है कि वो बाकी देशों के मुकाबले, बाकी देशों की तुलना में जो है, या बाकी देशों की केंद्रीय बैंकों की तुलना में ब्याज दर में कटौती नहीं करने वाला। ध्यान रखिए कि तमाम दुनिया के बैंक अपने ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, चीन ने कटौती नहीं
की, और यही महत्वपूर्ण,
ये एक बड़ा संकेत है बाजार के लिए। और जैसा मैंने कहा कि वो विश्व की मौद्रिक व्यवस्था से हमेशा से अलग रहा है और ये कुछ अलग नहीं है।
बिल्कुल। और अब आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का ब्रेथ रहेगा, बिल्कुल आपने सही कहा कि टैरिफ को लेकर थोड़ी सी लोगों की अभी शंकाएं बनी रहेंगी। और जैसे आज हुआ बैंकिंग सेक्टर में, कोई सेक्टर विशेष में अगर कहीं उछाल हुआ तो उसका असर पूरे बाजार पर पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। तमाम श्रोतागण, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines quickly. Domestic benchmark indices start the week on positive note. Sensex settles at 82,200, Nifty reclaims 25,000 mark. Week on positive note, Sensex rallies over 400 points, Nifty reclaims 25,000 mark. Major Asian markets end with gains. And EPFO adds over 20 lakh members in May this year, the highest ever in a month. And with that, it's a wrap on today's Market Mantra. For now, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.